તારીખ 3/12/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 164 અને 165 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 156.
સમયસર પરમાણુ આશ્રવ અધિકાર આશ્રવ કે ભેદ દો પ્રકાર કે હૈ ઓર આપસ મે જીવ ઓર જીવ આશ્રવ કિસ પ્રકાર સે નિમિતભૂત હોતે હૈ उसके बाद टीका में किया था कि मिथ्या दृष्टि जीव के परिणामों में कर्म का आश्रवण कराने का निमित्तत्व है। निमित्तत्व की बात चली थी। छह द्रव्यों में निमित्तत्व नाम का एक धर्म है छह द्रव्यों में, इसलिए परस्पर आपस में जब उपादान से कार्य होने की योग्यता होती है तब ये निमित्तत्व है, उसका संबंध, उसका ज्ञान, इस संबंध का ज्ञान हो सकता है या करने में आता है। शास्त्र में भी कराया गया है। तो यहाँ टीका में आचार्य महाराज ने ये लिया है के आश्रव जो है पुद्गल आश्रव है उसमें कौन निमित्त होते हैं कि मिथ्या दृष्टि के जो दर्शन हो पूर्वक ना राग पूर्वक के राग द्वेष परिणाम है उसमें वो निमित्तत्व है। सम्यक दृष्टि के राग द्वेष में वो निमित्तत्व नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्या आश्रव अधिकार है ना, तो सिद्धांत की कौन सी स्थापना की कि मिथ्या दृष्टि के परिणामों में नए कर्म का आश्रव उनका निमित्तत्व है, किंतु सम्यक दृष्टि के परिणाम में वो नहीं है। राग द्वेष है लेकिन आश्रवण का निमित्तत्व चला गया, ऐसा कहते हैं।
वो निमित्तत्व नहीं रहा, उसका कारण,
उसका कारण कि वो स्वभाव रूप परिणाम ने लगा। उसका कारण वो है कि वो जो भिन्न तत्व है पुद्गल द्रव और रागादि परिणाम, उसमें वो अपना अनुभव नहीं करते हैं। वो अपना रूप अनुभव नहीं करने से उसमें आश्रव का निमित्तत्व नहीं रहा, ऐसी बात है। वो शुद्धत्व के कारण है। शुद्धता में दूसरे पदार्थ का संपर्क टूट जाता है। क्या है, जो शुद्ध परिणमन है वो स्वरूप में उपयुक्त परिणमन है। कहा उसका जुड़ान है, योग है कि स्वरूप में वो उसका योग है, और अन्य द्रव्य में उसका योग नहीं है। तो उसको अन्य द्रव्य में संबंध ही नहीं रहा तो फिर उसका आश्रवण का निमित्त आने का निमित्त कैसे होगा?
नहीं होगा,
नहीं हो सकता, ऐसी बात है। द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणम गया, तो उसके परिणमन में, शुद्धत्व परिणमन में नया आश्रव का निमित्तत्व छूट गया। और वही सम्यक दृष्टि का परिणमन है। वो अल्पन श्रेय वो सम्यक दृष्टि नहीं, वो उसमें सम्यक दृष्टि का परिणमन नहीं लेते, क्योंकि वो उसमें अपने तो अनुभव नहीं करते। भावार्थ, भावार्थ से लेना है। ज्ञानावरण आदि कर्मों के आश्रवण का आगमन का निमित्त कारण तो मिथ्यात्व आदि कर्म के उदय रूप उद्गल परिणाम है। अब तो जीव के परिणाम भी नहीं लिए, क्योंकि वो मिथ्यात्वादी का उदय होने से जीव को वहां जुड़ान होता था। मिथ्यात्व का उदय न हो तो जीव को जुड़ान भी नहीं होता। तो मिथ्यात्व का उदय कब नहीं होता है कि जीव अपने पुरुषार्थ से उसको उपशमाता है, तब तो उसका उदय नहीं रहता। उदय नहीं रहता तो फिर जुड़ान होने का सवाल आता ही नहीं। इसलिए उदय का नया कर्म के साथ आश्रमण है, बीच में से जीव को निकाल दिया। इसलिए वे वास्तव में आश्रय है। तो ये मिथ्यात्वादी जो परिणाम है वही आश्रय है, और उनके कर्म आश्रवण के निमित्तभूत होने का जीव के राग द्वेष मोह रूप अज्ञानमय परिणाम है। ज्ञानमय परिणाम नहीं, अज्ञानमय परिणाम है, वही उसको निमित्त होते हैं। इसलिए राग द्वेष मोह ही आश्रय है। तो ऐसे अज्ञान में जो राग द्वेष मोह है वो आश्रय है,
यानी कर्म आश्रय है, वो मिथ्या दृष्टि को निमित्त होते हैं। ज्ञान
सम्यक दृष्टि को तो मिथ्यात्व का उदय ही नहीं होता है, तो उसको तो बात खत्म हो गई। उसको मिथ्यात्व का उदय सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व प्रकृति का रहता नहीं, और मिथ्या दृष्टि को तो हमेशा रहता है। इसलिए उनकी साइकिल चलती है, निमित्त निमित्त एक संबंध वाली। सम्यक दृष्टि को तो है ही नहीं। तो जिसके अज्ञानमय परिणाम राग द्वेष मोह है वही आश्रव भावाश्रव है, और वही नई नए कर्म के आगमन का निमित्त भूत होने से वहां द्रव्याश्रव भी उत्पन्न होता है।
मूल सिद्धांत कायम कर दिया,
वो कायम कर दिया कि उसका अज्ञानमय के कारण से है आश्रव, ज्ञानमय पने के कारण से आश्रव नहीं। तो आश्रम नहीं तो बंद नहीं, नहीं वो कहने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, राग द्वेष मोह रूप चिद विकार परिणाम है, वो तो अज्ञान में ही ब्रैकेट में लिया है, क्योंकि मूल में नहीं है। इसलिए इसलिए राग द्वेष मोह ही आश्रम है। उन राग द्वेष मोह को चिद विकार भी कहा जाता है। चित विकार मैंने चैतन्य परिणाम के, चैतन्य के विकार, चैतन्य की अवस्था में जो विकार है उसको चित विकार भी कहने में आता है, क्योंकि यहाँ तो वो विषय चलता है मूल गाथा में कि दो प्रकार है, जीव का भी है और अजीव का भी है, संग्न भी है और असंग्न भी है। क्योंकि सांख्य आदि में ऐसी भ्रांति होगी कि जीव को तो चित विकार होता ही नहीं, जो राग है वो भी पुद्गल के परिणाम है, नितांत पुद्गल के परिणाम है, उसको जीव का मानना ही नहीं, जीव में होता ही नहीं वो तो। निश्चयवासी में जाता है वो, तो कहते कि नहीं वो संग्न भी है, मैंने जीव के चिद विकार भी है और असंग्न भी है और पुद्गल परिणाम भी है। अकेले पुद्गल परिणाम है और जीव के होते ही नहीं, तो फिर उपदेश नहीं रहता, संसार नहीं रहता, फिर मोक्ष भी नहीं रहता।
जब तक मिथ्यात्व, जब तक जीव के परिणाम है, मिथ्यात्व नहीं है तो वो पुद्गल के परिणाम,
फिर पुद्गल के परिणाम हो गया। मिथ्यात्व चले जाने से फिर उसको पुद्गल में डाल दिया,
और जब तक मिथ्यात्व
जीव के हैं, ऐसी बात है। क्यों? क्यों? क्यों अपना अनुभव करता है इसलिए, और उसको क्यों नहीं कि वो अपना है ऐसा अनुभव नहीं करता। उसने वो माल बेच दिया। क्या
दिया।
वो पराय चीज होगी, वो चीज पराई होगी। वैराग द्वेष मोह जीव की अज्ञान अवस्था में ही होते हैं। ऐसे राग द्वेष मोह जीव की अज्ञान अवस्था में होते हैं, ज्ञान अवस्था में नहीं होते हैं, ऐसा कहते हैं। मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है, उसका ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। लेकिन शास्त्र पढ़ता है तो शास्त्र का ज्ञान, तो वो शास्त्र का ज्ञान है, आत्मा का नहीं है। क्या शास्त्र का ज्ञान किया, उसने आत्मा का ज्ञान नहीं किया,
ये भी मिथ्यात्व हो गया,
वो अज्ञान हो गया,
ज्ञान हो गया तो बंद हो गया।
हाँ, बंद हो गया। वो एक जगह अच्छा लिखा है उसने, वो मनोवर्गी वर्णी है ना, उसका एक चर्चा का भी छोटा ग्रंथ आया है, प्रश्न उत्तर में सारा ग्रंथ लिखा है, उसमें एक व्यवहार वाली बात अच्छी लिखी है। निक्षेप का विषय क्या है? निक्षेप से व्यवहार करने में आता है, चार निक्षेप से जगत में व्यवहार चलता है। जैसे किसी का नाम डालते हैं, राजा के पुत्र को राजा भी कह देते हैं, और जैसा गुण है ऐसा भी नाम रख देते हैं। चार प्रकार का चलता है ना, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। तो चार प्रकार निक्षेप क्यों कहा? कि व्यवहार करने के लिए कहा, लेकिन व्यवहार कब खड़ा होता है? कि जिस अर्थ का वर्णन चलता हो उस अर्थ ज्ञान में आए तब वो व्यवहार को प्राप्त होता है।
जो बात चलती है वही आए।
जिस जो अर्थ, अर्थ मैंने क्या कि द्रव्य और भाव को भी, कोई भी तत्व हो, कोई भी द्रव्य और भाव दो ही होगा, का तो द्रव्य होगा या द्रव्य का पर्याय होगा, मैंने भाव होगा। जो भी अर्थ का वर्णन चलते हो वो ज्ञान में ग्रहण हो, ऐसा लिखा है। ज्ञान में आवे मतलब ज्ञान में ग्रहण हो जाए, तब उसी का वर्णन जो कथन है तो व्यवहार को प्राप्त होता है। अन्यथा वो व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है, तो फिर जब निश्चय भी नहीं और व्यवहार भी नहीं तो फिर क्या रहा? कुछ नहीं रहा। न तो निश्चय है न तो व्यवहार है। तो धर्म में तो दो स्थान है, निश्चय और व्यवहार, दो की तो बात चलती है। निश्चय में भी नहीं और व्यवहार में भी नहीं, बात तो खत्म हो गई। अनिमति जैसा हो गया। कैसा हो गया? अनिमति जैसा हो गया। निश्चय है ना, व्यवहार है। तो इसमें से क्या निकालना है? हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं उसमें जो भी तत्वार्थ का विषय चलता है, उस जिसका वर्णन चलता है, जिसका कथन चलता है, वो किसी न किसी अर्थ है, वो अर्थ का ग्रहण होना चाहिए ज्ञान में। ना जैसे राग, तो राग है वो ज्ञान में आना चाहिए कि राग उसको कहते हैं। ऐसे आश्रय का अधिकार चलता है, तो भाव आश्रय किसको कहते हो? हमारे ज्ञान में नहीं ग्रहण हुए तो आश्रय संबंधी का ज्ञान व्यवहार को नाम प्राप्त नहीं होता है, उसको व्यवहार नाम नहीं दिया जाता है। ऐसी बात है।
जो जो पढ़े
हम शब्दार्थ कर लेते हैं, भावार्थ कर लेते हैं, क्या भावार्थ कर लेते हैं, लेकिन जो शब्द का विषयभूत पदार्थ है वो ज्ञान में ग्रहण नहीं करते। शब्द का विषयभूत जैसे शक्कर है जी। तो शक्कर शब्द है और शक्कर नाम का पदार्थ है जी। तो शक्कर शब्द बोलते ही शक्कर शब्द ज्ञान में ग्रहण, शक्कर पदार्थ ज्ञान में ग्रहण होना चाहिए, चाहे उपस्थित हो या अनुपस्थित हो। नहीं, शक्कर का स्वरूप ज्ञान में आ जाना चाहिए। मिठास तो जब चखेंगे तब आएंगे, लेकिन शक्कर है उनको, उसको कहते हैं कि जिसके मीठापन होता है, जिसका ऐसा कलर होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। सोना, आपने बोले कि चांदी शब्द बोला, तो आपको चांदी धातु है पूरे ज्ञान में आ गई। चांदी में मिलावट करते हैं ऐसी बहुत सी धातु है, वो नहीं
जी।
उसका नास्ति भी आ गया, और चांदी का अस्थि भी आ गया कि नहीं आया? अस्थि नास्ति से उसका स्वरूपाकार ज्ञान हो गया, तब तो वो ज्ञान सही है। तब तो चांदी बोलना चांदी के लिए व्यवहार कथन है। लेकिन चांदी का ज्ञान ज्ञान में ग्रहण ही नहीं हुए कि चांदी कैसी होती है,
तो
व्यवहार भी नहीं है।
जो बचा पाता है उसका खून बनता है, जो नहीं बचा पाता है उसकी रिश्ता बनती है।
समझ में नहीं आया?
बचाई जाए वस्तु तो खून बने, बचाए।
यहाँ तो थोड़ा ज्ञान का विषय लेना है कि ज्ञान में जिस बात चलती हो उस पदार्थ का ग्रहण होना चाहिए, वो यथार्थ है। हाँ, वो शुष्क ज्ञान है। फिर जो पदार्थ ग्रहण नहीं होता है, जैसे आत्मा से शुरू होता है श्रुत ज्ञान, कि आत्मा कहने से जैसा आत्मा है अपने स्वरूप में ऐसा ज्ञान में ग्रहण हुए तो उसको भाव श्रुत कहने में आता है। अगर ऐसा नहीं हो, भले ही शक्कर खाई नहीं, शब्द शक्कर शब्द सुनते वक्त शब्द शक्कर खाई नहीं, लेकिन मिठास का ज्ञान तो आया कि नहीं आया? क्योंकि नमक की डली भी ऐसी होती है जैसे शक्कर की, लेकिन बात शक्कर की चलती है,
शक्कर का ज्ञान आया
तो शक्कर का ज्ञान आता है कि नहीं, ग्रहण होता कि नहीं है? तो उस वो ज्ञान सही है, वो सत्य ज्ञान है, वरना ओक संज्ञा में ऐसे ही कल्पना विहार होता है। क्या होता है?
कल्पना
विहार होता है। पोपट तोता नहीं जानता कि राम कौन है, वो राम राम बोलता है उसको पुण्य होता है क्या?
नहीं।
पोपट को राम बोलने से पुण्य होता है क्या? नहीं होता है। ये टेप रिकॉर्डर प्रवचन बोलती है क्या? टेप बोलती है ना प्रवचन गुरुदेव का, उसको पुण्य होता है क्या?
नहीं।
है
नहीं।
शब्द से तो कुछ नहीं होता, भाव से जो कुछ होता है वो होता है।
राम बोल रहा है लेकिन जो भाव चल रहा है उसका कौन?
नहीं, उनको तो ये कि राम भी कोई मिर्च होगा या कोई जमरूख होगा, अमृत होगा, ऐसा कोई फल होगा, खाने की चीज होगी, जब आएगी तो मैं खा जाऊंगा। राम राम मुझे बोला, बोलने को बोलता है कि राम राम सिखाया है तो मैं बोलता हूँ, लेकिन वो खाने की चीज मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा। उनको तो वही है, उनको तो अशुभ भाव चलता है।
जो भाव चल रहा है वो इसका बंद चल रहा है।
हाँ, उसको तो कल्पना है कुछ ना। जब पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है ज्ञान में तो कल्पना होती है कुछ ना कुछ। ऐसे हमको भी तत्वार्थ का ग्रहण नहीं होता है ज्ञान में, अर्थ का ग्रहण ज्ञान में नहीं होता है तो कल्पना हो जाती है। इसलिए उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहने में आता है, यही कारण है।
अस्ति नास्ति दोनों बात जो आपने
कही, हाँ अस्ति नास्ति दोनों से वस्तु का स्वरूप ही तब निश्चित होता है कि चांदी है तो दूसरी धातु नहीं है, तांबा नहीं है, और भी दूसरी भी नहीं है, निकल वगैरह की। चांदी चांदी होती है, चांदी नहीं होती, वो चांदी जैसी भी दिखती है तो भी चांदी नहीं है,
उतनी दिखती है चांदी, चांदी होती है उतनी दिखती है।
हाँ, वो चांदी तो चांदी है और चांदी नहीं है उससे चांदी नहीं है, ऐसी बात है। उसको व्यवहार नहीं लागू पड़ता है। ऐसे हम शास्त्र पढ़े और अर्थ ग्रहण नहीं हुए, तत्वार्थ का ग्रहण नहीं हुए ज्ञान में, तो हमको शास्त्र पठन स्वाध्याय वो व्यवहार लागू पड़ता नहीं है। व्यवहार को प्राप्त नहीं होती वो क्रिया, व्यवहार को प्राप्त नहीं होती है, ऐसा लिया है। अर्थ का ग्रहण ज्ञान में नहीं हुए तो वो क्रिया व्यवहार का नाम को भी प्राप्त होती नहीं है। जाओ, इसलिए उन राग द्वेष मोह को चिद विकार भी कहा जाता है, अज्ञान पूर्वक है। वे राग द्वेष मोह जीव की अज्ञान अवस्था में ही होते हैं, ही लगाया, जीव की अज्ञान अवस्था में ही होते हैं। मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। मिथ्यात्व सहित ज्ञान कुछ भी प्रकार का हो वो अज्ञान ही है। उसमें भाषा की छटा कला कितनी भी हो और उगाड़ कितना भी हो शास्त्र संबंधित, और कंठस्थ कितना भी हो, पूरा समय सार कंठस्थ कर ले, वो ज्ञान है नहीं, वो अज्ञान है। ज्ञान तो नहीं है किंतु अज्ञान है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के अर्थात अज्ञानी के ही राग द्वेष मोह रूप आश्रय होते हैं। क्या सिद्धांत की स्थापना क्या है? कि मिथ्या दृष्टि के अज्ञानी के राग द्वेष मोह रूप परिणाम आश्रय होते हैं। ज्ञानी को मिथ्यात्व नहीं है, चारित्र मोह के राग द्वेष है, उसको आश्रय का निमित्तत्व लिया
नहीं।
उपादान में नहीं है तो निमित्त में नहीं है। जाप जाति बदल गई, पूरी उसकी जाति बदल गई। अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानी के उन आश्रमों का अभाव है। अब पहले जो 164-165 में अज्ञानी की बात किया, अभी प्रतिपक्ष में ज्ञानी की बात लेंगे, क्योंकि ज्ञानी का स्वरूप दिखाना है अज्ञानी के सामने, ज्ञानी का स्वरूप पहचान सके इसलिए दर्शाते हैं, बताते हैं। ये जयचंद जी का लिखा हुआ है। अच्छा। भावार्थ। ज्ञानावरण आदि कर्म के आवने को तो कारण मिथ्यात्व कर्म का उदय रूप उद्गल परिणाम है। बहुरी तिनके कर्म के आवने को निमित होने का निमित जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणाम है। तिनी को चित विकार कहिए ते जीव के अज्ञान अवस्था में होए हैं, ते जीव के अज्ञान अवस्था में होए हैं। सम्यक दृष्टि के अज्ञान अवस्था नहीं, आप दूसरा पक्ष ले लिया है। हाँ, दूसरा पक्ष आगे वाली गाथा का अनुसंधान भावार्थ में पंडित जी ने ले लिया है कि सम्यक दृष्टि के अज्ञान अवस्था नहीं, जाते मिथ्यात्व सहित ज्ञान को अज्ञान कहिए वो लिया है। मिथ्यात्व सहित ज्ञान को अज्ञान कहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी भया ताते ज्ञान अवस्था में नहीं, क्योंकि ज्ञान और राग भिन्न भिन्न वर्तता है, तो ज्ञान अवस्था में राग नहीं है। बहुरी अविरत सम्यक दृष्टि आदि के चारित्र मोह के उदय ते रागाधिक होए हैं, तिनका याके स्वामीपणा नहीं है। सम्यक दृष्टि को उसका स्वामीपणा नहीं है। उदय की बरजोरी ते हैं, उदय ऐसा तीव्र होता है और उनका भी कमजोरी है तो उतना अस्थिरता आ जाता है। तिन्हों को रोगवत जानी मेटा चाहे हैं, उतना रोग रह गया है, उतना रोग रह गया है उसको मेटा चाहे हैं। इस अपेक्षा से इनते राग नहीं, वो अपेक्षा लेकर के कहते हैं कि उनको राग नहीं। जैसे यहाँ से कोई जाते हैं स्टेशन पहुंचे, भाई किधर गए आपके घर वाले, तो कहे तो बम्बई गए। अभी तो स्टेशन पहुंचे हैं लेकिन क्या कहते हैं, बम्बई गए। वो तो बम्बई तो 24 घंटा के बाद पहुंचेंगे या 15 घंटा के बाद पहुंचेंगे। अभी तो भावनगर भी नहीं छोड़ा लेकिन बोलेंगे क्या, बॉम्बे गए। मतलब निर्विघ्न पहुंचने वाले हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि निर्विघ्न निराश्र होने वाला है, ऐसा इसका प्रयाण है। ताते मिथ्यात्व सहित रागादिक होए तेही अज्ञान में राग द्वेष मोह है, ते सम्यक दृष्टि के नहीं है ऐसा जानना। आगे ज्ञानी के तिनी आश्रवनी का अभाव दिखावे हैं, अब वो ज्ञानी की गाथा कहेंगे। क्योंकि वो 166 में आएगा वो भावार्थ। हाँ ठीक है, और उसकी गाथा तो नीचे आ रही है, सम्यक दृष्टि वाली गाथा तो नीचे आ रही है। विषय के अनुरूप गाथा है ना, इसलिए ऐसा कर लिया। नथी दू आसव बंधो समाधि स आसवणी रहो संते पुण्य बद्धे जान दे सोते अबंधत अबंधन तो शब्द हिंदी में चलता है, इधर सत्ता विषय शब्द हिंदी में अनुवाद किया है, हिंदी में नहीं है विषय, नहीं है इधर अनुवाद में किया है। गाथार्थ। सम्यक दृष्टि के आश्रव जिसका निमित है ऐसा बंध नहीं है। क्या आश्रव जैसा जिसका निमित्त है ऐसा बंध नहीं है। तो आश्रव बिना का बंध कैसे होता है, है? कि उसको होता ही नहीं है ऐसा लिया जाए। संस्कृत में तो ऐसा ही है कि सम्यक दृष्टि आश्रव नहीं, सम्यक दृष्टि नास्ति तो आश्रव बंध सम्यक दृष्टि है आश्रव निरोध। सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं है, आश्रव और बंध दोनों नहीं है। तो आश्रव जिसका निमित्त ऐसा बंध नहीं है, क्यों के आश्रव का निरोध है, क्योंकि उनको आश्रव का ही निरोध है, आश्रव बंद हो गया है उसको। देखो सम्यक दृष्टि को आश्रव बंद हो गया, कितना सम्यक दृष्टि का महिमा किया है, ये तो मूल गाथा है कुंदकुंदाचार्य के, नथी दू आश्रव बंदो समाधि सा, मूल गाथा में बात करते हैं। क्योंकि आश्रव का निरोध है, नवीन कर्मों का नहीं बांधता हुआ, कौन सम्यक दृष्टि नवीन कर्मों को नहीं बांधता हुआ, वह सत्ता में रहे हुए पूर्वबद्ध कर्मों को जानता ही है,
जानता है
कर्म का उदय, कर्म की सत्ता को भी जानता है, उदय को भी जानता है, ज्ञाता दृष्टा रह करके
भुगता नहीं है,
भुगता नहीं है, ऐसी बात है। राग द्वेष में तन्मय होकर के नहीं भोगता है, पर उदय आके चला गया तो ऐसा बोलने में आता है कि उसने भोग लिया, लेकिन वास्तव में राग द्वेष मोह करके भोगा
नहीं है,
जाना ही है। जब राग द्वेष नहीं किया तो फिर परिणाम में क्या किया, तो क्या जाना, परिणाम हुआ कि नहीं हुआ, कि हुआ तो इसमें क्या हुआ, कि ज्ञाता हुआ, मात्र ज्ञाता रह गया।
भोजन तो करता है,
भोजन करता है ऐसा दिखने में आता है। अब कहते हैं कि तुम कहां से कहां खड़े रहकर दिखते हो, अगर तुम पुद्गल में खड़े हो तो तुमको वो भी पुद्गल में खड़ा हुआ दिखने में आएगा, और तुम आत्मा में खड़े हो तो तुमको आत्मा में सम्यक दृष्टि खड़ा है ऐसा दिखने में आएगा। वो कलकत्ता में एक दिन रात्रि चर्चा में वो बात चल गई पर्यूषण के दिनों में, वे राग है वो जीव का है या नहीं है, प्रश्न निकाला वो सौभाग्य जी ने, मोहनलाल जी पाटनी के लड़के हैं बड़े, थोड़ा थोड़ा रस लेते हैं। हाँ, तो राग जीव का है या नहीं है, समय सार में तो दो बात आती है, जीव का नहीं है, पुद्गल का है, और कभी कहते हैं कि जीव का है, तो फिर वास्तव में ये बात तो परस्पर विरुद्ध दिखती है, वास्तव में क्या है, हम क्या निश्चय करें, ये प्रश्न चला। मैंने कहा राग का निश्चय करके पहले पहले ये बताओ कि आप क्या खड़े हैं, किधर खड़े हैं, और कहाँ खड़े रह करके उसका निर्धार करना चाहते हैं, निश्चय करना चाहते हैं, ज्ञान करना चाहते हैं, पहले ये पहले फाइनल करो कि आप क्या खड़े हैं। जहां आप खड़े होंगे वैसा वो दिखाई देगा, आप खड़े रहे राग में और पुद्गल में और कहेंगे कि राग मेरा नहीं है पुद्गल का है, तो ये बात गलत है, और आप अगर खड़े रहे आत्मा में तो राग पुद्गल का ही दिखेगा,
दिखेगा
आत्मा का दिखेगा,
गुरुदेव को सब भगवान नजर आते
हैं, गुरुदेव को सब भगवान नजर आते हैं, और केवली को भी सब भगवान नजर आते हैं। वो आनंद गंजन एक पद बहुत अच्छा बनाया है, प्रभु तुम जानग रीति सहु जग देखता हो लाल, प्रभु आपकी जान को भी गुरुदेव भगवान कहते थे,
भगवान
क्या अखबार आते हैं ना, तो विरोधी एक बार तो गाली भी निकालते थे, तो गाने वो पढ़ते थे, वो अखबार खुद ही पढ़ते थे, कैसा है ऐसा है ऐसा है, तो कह रहे भगवान तुझे क्या हो गया है, थोड़ा अरे भगवान तुझे क्या हो गया है, हाँ तो भगवान कह करके पुकार देते, अरे भगवान तुझे क्या हुआ, ये क्या हुआ तुझे, अब तू क्या करता है भगवान, प्रभु कहते हैं भगवान कहते हैं,
अरे आत्मा, आत्मा भी कहते,
हाँ आत्मा तो कहवे ही कहे, जीव और आत्मा तो बार बार कहे, शादवाद को नास्तिक दर्शन भी कहने वाले हैं जगत में, जैन दर्शन को ईश्वर कर्तृत्ववादी है वो नास्तिक कहते हैं कि वो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर कर्ता को नहीं मानते, इसलिए वो नास्तिक है ऐसा कहते हैं। लेकिन उनके जो सिद्धांत है उसमें ईश्वर बनने का, परमेश्वर बनने का, परमेश्वर ईश्वर नहीं, परमेश्वर बनने का विधान है, उनको समझते नहीं है तो ऐसा बोल देते हैं। वो कृपालु देव लिखते हैं मोक्षमाला में कि ऐसे कहने वालों की क्या गति होगी, इसका विचार करते ही मुझे करुणा आती है। अरे रे, वो जैन दर्शन को ऐसा बोलते हैं, जैन है सो नास्तिक है, चार्वाक में से निकला हुआ है ऐसा कहते हैं क्या ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा लिखा चार्वाक एक नास्तिक मत हो गया, वो कुछ मानते ही नहीं थे, आत्मा को ही नहीं मानते, जीव को ही नहीं मानते, ईश्वर को ही नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, ऐसे वो थे तो उसमें से वो एक निकला है ऐसा मान लेते हैं। मैं तो ज्यादा अभ्यास नहीं किया, लेकिन वो नास्तिक मैंने आत्मा को ही नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, किसी को गुरु को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, सिद्धांत को नहीं मानते। नवीन कर्मों का नहीं बांधता हुआ वह सम्यक दृष्टि सत्ता में रहे हुए पूर्व में बद्ध किए हुए बांधे हुए कर्म को मात्र जानता ही है। ठीक है, वास्तव में ज्ञानी के ज्ञानमय भावों से अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरुद्ध अभाव रूप होते हैं। निरुद्ध मैंने क्या, अभाव हो गया है। ज्ञानी को ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो अज्ञान का अभाव हो गया है, नाश हो गया है अब, क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते, ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं रह सकते, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अज्ञानमय भाव, अज्ञानमय भाव रूप राग द्वेष मोह जो कि आश्रवभूत आश्रव रूप है, आश्रव का स्वरूप दिखाया, अज्ञान पूर्वक होने वाले जो राग द्वेष है, अज्ञान समेत, अज्ञानमय, अज्ञानमय माने क्या कि जो राग द्वेष है सोई मैं हूं, मैं तो रागी, क्रोध हुआ तब क्रोधी, राग हुआ तब रागी, मनुष्य हुआ तब मनुष्य, और मनुष्य में भी पुरुष हुआ तब पुरुष, ऐसे मान लेता है वो अज्ञानमय जो परिणाम है वही आश्रव रूप है, कोई आश्रव है, दूसरा कोई आश्रव का स्वरूप है ही नहीं, तात्विक दृष्टि ऐसे ये तत्व का अधिकार, आश्रव तत्व किसको कहते हैं कि यही आश्रव तत्व है, वो चले जाने से फिर रहा वो आश्रव तत्व नहीं है, आश्रव का आश्रवपना छूट गया है उसमें से, ऐसा कहते हैं। देखो उनका निरोध होने से, मैंने उसका अभाव होने से, यानी के आश्रव का निरोध होता ही है, क्या समझाते हैं, बहुत ध्यान से लक्ष्य में लेने वाली बात है कि आश्रव तत्व किसको कहें, कि अज्ञान में जो चिद विकार है उसमें आश्रव का तत्व है, वो मिट गया, उसका अभाव हो गया तो आश्रव
मिट गया
जा, तत्व दृष्टि फिर आश्रव नहीं रहा क्या, तत्व दृष्टि से आश्रव नहीं रहा, क्योंकि वो तो दिखने में तो आता है चारित्रमों के राग द्वेष, क्योंकि वहाँ स्वतत्व की दृष्टि नहीं है। जिसको ऐसा सिर्फ चारित्रमोह का राग द्वेष रहा, वहाँ स्वतत्व की दृष्टि है ही नहीं, वो तो परतत्व हो गया। तो सारा जगत हो तो हो अपने अपने जगह पे, सारा जगत अपने स्थान में है, हमें क्या लेना देना,
कुछ नहीं लेना
देना, हमें कुछ लेना देना
नहीं है।
संबंध छोड़ दिया, पूरा नाता
छोड़ दिया,
छोड़ दिया। हाँ, लोह चुंबक में क्या होता है, लोह चुंबक का चुंबकत्व छूट गया, वो सादा लोढ़ा हो गया, बात खत्म। ज्ञानी के आश्रव का निरोध होता है, होता ही है, इसलिए ज्ञानी आश्रव जिनका निमित है, ऐसे ज्ञानावरण आदि पुगल कर्मों को नहीं बांधता। क्या, इसलिए ज्ञानी आश्रव जिनका निमित है, ऐसा ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म को नहीं बांधता। जो भावाश्रव से पुद्गल कर्म बंधता है, ऐसा प्रकार वहां रहा नहीं, वो प्रसंग खत्म हो गया है। कैसे, कि सदा अकर्तृत्व होने से, अकर्तृत्व कहो या ज्ञातृत्व कहो, अकर्तृत्व कहो या ज्ञातृत्व कहो, ज्ञाता रहा तो कर्ता नहीं हुआ, कर्ता नहीं हुआ तो ज्ञाता रह गया। सदा अकर्तृत्व होने से नवीन कर्मों को न बांधता हुआ, सत्ता में रहे हुए पूर्वबद्ध कर्मों को स्वयं ज्ञान स्वभाववान होने से मात्र जानता ही है, उसमें जानता ही लिया है, उसमें मात्र जानता ही ऐसे लिया है, जानता है तो मात्र जानता है, ज्ञाता रह करके।
केवल जाने केवल
केवल केवल तो मात्र, केवल कहो, मात्र कहो, एक ही बात है। ऐसे दृष्टांत लिवे कि कोई सम्यक दृष्टि है, कोई खाने का कार्य कर रहा है, तो उसको ये अनुभव नहीं होता कि ये जो थाली में से जो भी आहार के परमाणु है वो मैं उठा रहा हूँ, ऐसा अनुभव उसको
नहीं होता,
नहीं मैं उठा रहा हूँ, क्यों, मैं उठा नहीं सकता उसको, पुद्गल को मैं स्पर्श ही नहीं कर सकता, उठाऊं तो कहाँ से, तो उसको ये अनुभव नहीं होता कि मैं उसको उठा रहा हूँ। और ये जो राग हुआ कि मैं इसको हार लूं, तो ये मैं करता हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता है,
लेने का राग भी अपने को अनुभव नहीं करता,
मैं करता हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता है। राग होता है वो जानने में आता है, जैसे ठंड होती है वो जानने में आती है, लगती है ऐसा अनुभव
नहीं होता
है। ऐसे खाने का पुद्गल मैं उठा रहा हूँ, मैंने रोटी का टुकड़ा उठाया, ऐसा अनुभव उसको नहीं होता है। और मैं खाने का विकल्प किया, वो मैंने किया, ऐसा अनुभव नहीं होता है। क्या, दोनों से भिन्न रह करके दोनों को वो जानता है। कैसे जानता है, कि पर है ऐसा जानता है, वो पर को पर रूप में जानता है,
हमारी क्रिया को देखता रहता है,
देखता रहता है, जानता रहता है, बस
बहुत आनंद लेता
हूँ। हाँ, बहुत आनंद रहता है, क्योंकि निराकुलता है वहाँ, सिर्फ जानने में
निराकुलता
है, वो जानने में रहता है। कहाँ रहता है फिर, कि मैं तो जानता हूँ, और मैं जानने वाला मिट जाऊँ तो राग करूँ ना, मैं कब राग कर सकता, कि जानने वाला मिट जाऊँ तो, लेकिन जानने वाला तो मैं मिट ही नहीं सकता अगर मिटाना चाहूँ तो भी। क्या लिखा है, टंकोत किरण नायक स्वभाव होने से आएगा निर्जराधिकार में, सम्यक दृष्टि सात कलश आएगा ना, टंकोत किरण एक नायक स्वभावान होने से। टंकोत किरण का मतलब क्या, कि जिसको मिटाया नहीं जाता, जो लिखते हैं वो तो निकल जाता है, लेकिन टांकने से उत्कीर्ण किया हो, खुदाई किया हो, वो मिटता नहीं है।
यानी रामचंद्र जी छह महीने लेकर बोल रहे हैं, मतलब लक्ष्मण जी को लेकर चल रहे थे, भगवान बड़े आनंद में देखता हूँ।
हाँ हाँ,
देख जान रहे थे।
हाँ, यही बात थी भीतर में कि उसके भी वो ज्ञाता थे, क्योंकि मैं ज्ञाता हूँ, मेरा ज्ञातापना न मिट सकता है न मिटाया जाता है। क्या सोने को पानी में डालने से जंग लगता है क्या?
नहीं लगता है।
तो फिर ज्ञाने को उदय आने से उसका जंग लगता है क्या? है कि नहीं लगता है? बस ऐसा स्वभाव हो गया है, ऐसी बात है, ऐसी बात है कि मैं ज्ञाता अपना मिट नहीं जाता। जो मैं मिटता नहीं तो फिर करता कैसे राग द्वेष, कर कैसे सकता हूँ? तो लेकिन होता तो है। हाँ होता है, होता है उसको मैं जानता हूँ, करता हो करके जानता हूँ ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। ये ज्ञानी का स्वरूप दर्शाते हैं। नहीं, वो सहज होता है, राग भी सहज और राग का भिन्न रह करके ज्ञान भी सहज, दोनों सहज। किसका पेट? आत्मा का पेट है? है पेट आत्मा का है, किसका है पेट? है पेट आत्मा का नहीं है। मेरा पेट में मैंने खाया, ये बात ज्ञानी की नहीं है, वो बात वो अज्ञानी की है। अनंत काल में आत्मा ने कुछ खाया ही नहीं। एक इंद्रिय क्या खाता है? अनंत काल रहता है, चलो एक इंद्रिय का आहार कौन सा है बताइए? खाए बिना चलता कि नहीं चलता? जब एक इंद्रिय को खाए बिना अनंत काल चलता है, कुछ नहीं, उनको श्वासोश्वास है ही नहीं, वो प्राणी नहीं है उसके पास
जी।
श्वासोश्वास की प्रक्रिया नहीं है, न पानी पीने के लिए कोई, पी करके रखने की भी इनके शरीर में कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं वृद्धि होती है, उतना ही उतना रहता है।
एक श्वास को जानता है, एक एक श्वास जानता है,
एक श्वास में 18 वक्त मरता है, जन्मता है मरता है जन्मता है, कुछ खाने पीने का नहीं होता है, लेकिन वो देह बदलता है, वो कुछ खुद मरता नहीं है। जीव मरता है क्या? तत्व ज्ञान हुए बिना खाने नहीं खाने की तपस्तरण की बात सही रूप में समझ में नहीं आती, तो अभिमान हो जाता है कि मैंने नहीं खाया, खाया तो मैंने खाया और नहीं खाया तो मैंने नहीं खाया, दोनों अभिमान है। ज्ञानी को खाने में भी नहीं और नहीं खाने में भी नहीं। ज्ञानी भी उपवास करते हैं, तपस्तरण करते हैं ज्ञानी, तो क्या उसको भाव आता है कि मैं तो अनाहारी आत्मा हूँ, जब खाता था तब भी मैं खाता था ऐसा अनुभव नहीं है, तो नहीं खाने की क्रिया में मैं नहीं खाता हूँ ऐसा अनुभव क्यों करूँ? इसका ऐसा अनुभव होता ही नहीं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, खाने का जो क्रिया है उसका भी ज्ञाता हूँ, और उपवास रहने में नहीं खाने का जो प्रकार है उसका भी मैं ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। दुनिया को खबर पाने की क्या जरूरत है? प्रेरणा देने वाले श्री गुरु। प्रेरणा कौन देते हैं? श्री गुरु देते हैं, ऐसी बात है। जड़ को इच्छा नहीं होती है, चेतन को इच्छा होती है, लेकिन इच्छा है वो शुद्ध चैतन्य नहीं है। ज्ञानी को तो शुद्ध चैतन्य वो अपना स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य से भिन्न हो वो अपना स्वरूप नहीं है, ऐसी बात है।
मात्र जानना है
वो तो समझना है, सम्यक दृष्टि का स्वरूप वो तो समझना है, इसमें है क्या वास्तव में, वो किस प्रकार की बात है। खाता है तो बोलते हैं कि नहीं खाता है, बोलता है तो कि नहीं बोलता है, चलता है तो कि नहीं चलता है,
करता ही नहीं है।
खाते हुए भी उपवासी और बोलते हुए भी मौन है और चलते हुए भी स्थिर है। आते हैं अध्यात्म भागवत है, उसमें वो बात आते हैं, वहां दो बात चली है। एक दुर्वासा करके मुनि लिया है, बहुत उपवासी थे, बहुत तपस्या करने वाले, लेकिन क्रोधी बहुत थे, कोई उसको पास जावे और थोड़ा सा अपराध हो गया तो श्राप देवे, वो वहां से बात चली है। और श्री कृष्ण को तो 16108 रानियां थी, वो तो वासुदेव थे, तीन खंड के धनी थे, तो इनका इतना वैभव था। तो किसी ने पूछा कि दुर्वासा उपवासी है या श्री कृष्ण उपवासी है, श्री कृष्ण उपवासी है, दुर्वासा नहीं है, ऐसा जवाब दिया है वहां, क्योंकि वो क्रोधी थे। फिर बोले कि दुर्वासा ब्रह्मचारी है या श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है, तो कि श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है। ऐसी बात चली है वहां, वो भागवत में ऐसी बात चली है। हाँ, कि वो खाते हैं तो कि नहीं वो उपवासी है, रानियां है तो कि नहीं ब्रह्मचारी है, ऐसी बात चली है वहां।
योगी थे,
योगी थे ऐसे बताए वहां, कि वो योगी थे और ये भोगी थे, ये जंगल में रहते थे फिर भी भोगी थे, और ये महल में रहते थे फिर भी
योगी
थे, ऐसा वहां चला है, कथा चली है वहां, ऐसी चली है वहां भी, अध्यात्म का प्रकरण चलता है वैसा। हाँ, वो शास्त्र में भी ऐसी बात आई है, वो आई तो यहाँ से लिया है, सब उधर द्विवेदनी में से सब बात तो चली है, सब मत तो निकले यहाँ से निकले। नहीं, वो ऐसा समझे कि भगवान को ऐसा ही लेना, श्री कृष्ण को तो भगवान थे, तो भगवान तो खावे तो भी नहीं खाया ऐसा लेना, भोग भोग उसका नहीं गिनना, ऐसा भोग संज्ञा में है ना, भीतर का क्या स्वरूप है वो नहीं जानते, परिणमन क्या है वो चीज वहां नहीं है, तो ऐसे यानी उसको आसक्ति नहीं है, ऐसा लेते। फिर थोड़ा ज्यादा लेवे तो क्या लेवे, कि आसक्ति नहीं थी उनको, आसक्ति थी और उनको आसक्ति नहीं थी, तो आसक्ति मिट गई इसलिए खाया नहीं खाया बराबर, ऐसा। ठीक है, क्यों कि सम्यक दृष्टि को आश्रम नहीं होता है, तो कि सम्यक दृष्टि को कैसे आश्रम नहीं होता है, खाता है पीता है बोलता है, व्यापार धंधा कुटुंब परिवार सब उनको है, आश्रम क्यों नहीं है, कि आश्रम तत्व का ज्ञान करो तुम, तो वो जानता है करता होता नहीं है। क्या लिखा है, अकर्तृत्व होने से, कब निर्विकल ध्यान में होते हैं तब कि नहीं, सदा अकर्तृत्व होने से, क्या लिखा,
सदा
अकर्तृत्व होने से नवीन कर्मों को न बांधता हुआ सत्ता में रहे पूर्वबद्ध कर्मों को स्वयं ज्ञान स्वभाववान होने से, क्यों, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मात्र जानना उतना ही मेरा कार्य क्षेत्र है, वहां मेरा कार्य समाप्त होता है, जानने के आगे मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, ज्ञान स्वभावी होने से मात्र जानना उतना ही मेरा कार्य है, इससे आगे मैं कुछ कर सकता
नहीं।
हाँ, भिन्न मानता है, भिन्न अनुभव करता है, मानता है क्या है, अनुभव करता है कि ये होता है, मैं ज्ञान स्वरूपी ज्ञान करता हूँ, ज्ञान को छोड़कर मैं विकल्प कर सकता नहीं हूँ। एक विकल्प भिन्न रूप, भिन्न रूप अनुभव में आते हैं, भिन्न रूप जानते हैं, होते हैं अपने में, होते हैं मैं उसका करता नहीं, मैं उसका कराने वाला नहीं, और जो होता है उसको मैं इष्ट भला मानने वाला नहीं हूं, तीनों बात हो जाती, तीनों छूट जाता है, कर्ता कार्यता और अनुबंधता, ये तीनों ही छूट जाता है उसको। हाँ, वो आत्मा नहीं करता है वहाँ, जो ज्ञाता रहता है वो वहाँ नहीं करता है, ज्ञाता रहता है कि नहीं रहता है, ऐसी बात है। एक जासूस है, क्या
जासूस,
दुश्मन के सैन्य में घुस गया और सभी डिसिप्लिन है, वो सैनिक का डिसिप्लिन जो होता है वो बराबर पालन करता है। किसी ने पहचान लिया कि ये पाकिस्तान वाला है, अपने सैन्य में घुसा है, तो उसका पर वो नजर रखता है, तो क्या करता है, कहीं भी डिसिप्लिन का भंग नहीं करता है। अगर एक जगह भी कानून तोड़े तो उसके ऊपर शंका जावे ने। अब जिसको पहचान लिया वो क्या मानेगा उसको, तो उसका अपना अपना वाला मान लेगा क्या?
नहीं
है कि नहीं, इसका इरादा को अच्छी तरह पहचानता हुआ वो मानता है कि वो बराबर पालन करता है, एक एक हुक्म का सेनापति का पालन करता है, लेकिन वो अपने वाला है, पूरा दुश्मन है। क्या बड़ा दुश्मन है, अधूरा दुश्मन है कि पूरा दुश्मन है? ऐसी बात है। तो राग को रोग जानते हुए आया कि नहीं आया, उसको मिटाना चाहते हैं, ऐसी बात है। वो अपना जानते नहीं। क्या शरीर की पर्याय रोग है? रोग किसकी पर्याय? तो क्या हम अपनी जान लेते हैं क्या? पर्याय शरीर की है ना, वहां तो तर्क नहीं करते कि शरीर की पर्याय शरीर में है, क्यों नहीं मानते अपने अपना शरीर में तो अपनत्व रखा है, फिर रोग में क्यों, रोग को क्यों नहीं मानते? वैसे राग है वो रोग है, आत्मा की पर्याय होने के बावजूद भी वो रोग है, अपने मानने लायक है नहीं, और माने तो वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ऐसी बात है। मात्र जानता ही है, ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है, कर्तृत्व नहीं है। ज्ञानी का तो ज्ञान स्वभाव है, राग को करना वो उसका स्वभाव ही नहीं है ना। यदि कर्तृत्व हो तो कर्म को बांधे, राग का कर्तापना हो जाए परिणाम में तो कर्म बंद हो जाए, आश्रय भी हो जाए, किंतु नातृत्व होने से कर्म बंद नहीं करता, नाता रहता है, इसलिए वो कर्म बंद को करता है। वो जासूस है, वो डिसिप्लिन ऑर्डर पालते हुए भी पालता नहीं है। देखो
पालते हुए भी
नहीं पालता हुआ है, ये तो भयंकर है। क्या है सबसे ज्यादा? वो भयंकर है। हाँ, फर्स्ट नंबर आ जाए वो, लेकिन सबसे भयंकर वो है। ऐसे ज्ञानी मानता है कि ये राग सबसे भयंकर है, है? हाँ, उसको टालने का ही उद्यम करते हैं, कभी प्रमाद करते नहीं है। ये बात है।
एक मिनट भी तुम्हें आंख में गोली नहीं देना चाहता है, एक मिनट भी आंख में गोली नहीं देना चाहता है।
भगवान जय हो परम कृपा श्री कांत गुरुदेव।